This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Protests continue in the U.S. and around the world this weekend against racism and police brutality. In the nation's capital, Washington, D.C., thousands of demonstrators once again streamed into the city, as well as other major U.S. cities. Saturday's demonstrations came the same day George Floyd, the man at the center of the latest outrage, was remembered in his North Carolina hometown by mourners who waited hours for a glimpse of his golden coffin. Wearing masks and calling for police reform, protesters peacefully marched nationwide and on four other continents. Collectively, they may have been the largest one-day mobilization since Floyd's death while in police custody. Following frequent episodes of violence, the crowds in the U.S. have shifted to a calmer tenor in recent days. Tensions between the White House and Pentagon have stretched to a near breaking point over President Donald Trump's threat to use military force against street protests triggered by George Floyd's death. Friction in this relationship historically is not unusual, but in recent days, and for the second time in Mr. Trump's term, it has raised a prospect of high-level resignations and the risk of lasting damage to the military's reputation. The world has passed another grim coronavirus milestone, exceeding 400,000 confirmed COVID-19 deaths. The United States still has the highest number, with nearly 110,000 people dying from the virus. The number of global infections is more than 6.9 million. The U.S. has more than 1.9 million cases. More than 3.1 million people have recovered, though, from the respiratory illness. Global health leaders are concerned, though, how quickly Brazil has overtaken other countries and now sits at number 2 for the number of infections and number 3 in deaths. From Washington, this is VOA News. Coronavirus cases across Europe have fallen off sharply, and Britain is now cautiously proceeding with partial school reopenings and the resumption of basic business activity that ended when the country shut down March 23rd. Prime Minister Boris Johnson's government also intends to reopen all stores June 15th. Restaurants and pubs will be allowed to seat a limited number of customers in a week. The South African government has agreed how much it will pay private hospitals and medical practitioners to treat severely ill COVID-19 patients if public hospitals run out of space. That, according to a senior health official who spoke to Reuters. The government has been in talks for months with private firms and medical associations ahead of a probable scenario where public hospitals run out of critical care beds. A health ministry official says in the agreement, the government would pay up to $950 a day for COVID-19 patients who get treated in critical care beds in private hospitals. Australia disputes Chinese government advice given to Chinese citizens, urging them not to travel to Australia because of what Beijing calls a surge in racism during the coronavirus pandemic. The Chinese Ministry of Culture and Tourism issued the warning, insisting there was, quote, an alarming increase in racist attacks on Chinese and Asian people, end quote, in Australia. This is strongly denied by officials in Canberra. It's worth noting Australia's borders are closed right now to all foreign nationals. China is Australia's biggest trading partner, but this adds friction in the relationship. A Japanese news agency reports Sunday Japan has decided not to join the United States, Britain, and others in issuing a statement scolding China for imposing a new security law. The United Kingdom, the U.S., Australia, and Canada condemned China May 28th for imposing a law they said would threaten freedom and breach a 1984 Sino-British agreement. Germany's foreign minister voiced regret Sunday at a report U.S. President Donald Trump plans to cut the number of U.S. troops stationed in Germany, stressing close cooperation was in the interest of both countries. Other senior politicians in Berlin were more blunt in their criticism, slamming the plan as the latest blow to U.S.-German ties and a potential security risk. Libyan strongman Khalifa Haftar has backed a ceasefire in Libya starting Monday after Egypt's president announced the move after talks in Cairo. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi met with General Haftar and the head of the Libyan House of Representatives, Akila Salah, and called for a ceasefire beginning Monday, June 8th. Egypt's initiative is based on the respect of all international resolutions. It calls for a ceasefire beginning Monday at 6 a.m. local time, in addition to the withdrawal of all foreign mercenaries from the entire country and the dismantling of all militias to allow the Libyan army and the security forces to exert control. Diane Roberts.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका भर में मुजाहरे जारी, अपडेट्स लेंगे सारा जमा से, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुल्क को मुनकसिम करने का इल्ज़ाम, रिपब्लिकन रैंक से भी तनकीद, सियासी मुजमरात, रिपब्लिकन से वाबस्ता साजे तारण और डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक जफर ताहिर से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद के एतबार से चीन से भी आगे निकल गया, क्या खतरा जन्म ले रहा है, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर बैठे तजियाकार क्या सोचते हैं। न्यूयॉर्क से डॉक्टर एजाज अहमद और लाहौर से इसार राणा सीनियर साफी और तजियाकार हमारे साथ होंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
www.voanews.com/urdu
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम वाशिंगटन डीसी में, वैसे तो पूरे अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में जॉर्ज फ्लॉयड उसकी पुलिस की तहवील के दौरान मौत के ऊपर मुजाहरे जारी हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में जुमेरात को मुसलसल सातवां दिन है। इसके बावजूद के बुध के रोज़ अहम डेवलपमेंट्स हुई थी और जो पुलिस ऑफिसर इसमें मुलविस बताए जाते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मौत में, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है। अब वो सेकंड डिग्री मर्डर केस के चार्जेस का सामना कर रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर तीन पुलिस ऑफिसर जिनको इससे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था उनको भी इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया है और कत्ल में मदद का इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद है। सारा जमा हमारी कोलीग, उन्होंने वाशिंगटन डीसी के मुजाहरों को कवर किया है, उनसे मालूम करते हैं कि प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं, मुजाहरीन क्या चाहते हैं। एक तवक्को तो ये भी थी कि जब ये चार्जेस बढ़ा के उनके मुतालबे के मुताबिक उनको कैटेगरी 2 में लाया गया है शायद ये ख़त्म हो जाते, लेकिन ये सिलसिला इस वक्त तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया है।
जी वाशिंगटन में सभी मुजाहरे जारी हैं, एक मुजाहरों की नौयत में थोड़ी सी जो तब्दीली आई वो ये थी कि अब वो मजीद पुरअमन होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते के अख्तितम पर जब फ्राइडे सैटरडे और संडे को प्रोटेस्ट हुए थे तो हंगामा आरआईटी हुई थी, लूटमार भी हुई थी, लेकिन अब उस तरह के वाकयात वाशिंगटन डीसी में तकरीबन ना होने के बराबर है। और जो यहाँ पे पुलिस के चीफ हैं उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि जो मुजाहरा करने वाले हैं वो खुद भी एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश अब ये है बड़ी हद तक मुजाहरे पुरअमन तरीके से ही हो। जहाँ तक जिस बात का ताल्लुक है कि मुजाहरीन का मुतालबा एक बड़ा जो था कि इन जो दीगर पुलिस अहलकार हैं इनको भी गिरफ्तार किया जाए, वो मुतालबा तो पूरा हुआ है, लेकिन जब गुज़िश्ता रोज कवरेज के दौरान मैंने कुछ मुजाहरीन से बात की और उनसे यही पूछा कि अब मुजाहरा करने की क्या वजह है, तो उनका ये कहना था कि चार्जेज में जो मजीद संगीनी लाई गई है वो बकौल उनके एक पता है लेकिन एक छोटी फतह जरूर है, और अभी जो निज़ाम में जो खामियां वो देखते हैं वो चूंकि दूर नहीं हुई है इसलिए वो मुजाहरे अपने जारी रखेंगे, वो अपने एहतजाज जारी रखेंगे। और मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि कब तक ये एहतजाज जारी रह सकता है, तो उनका ये कहना था कि जब मार्टिन लूथर किंग का दौर था 60 की दहाई में जब सिविल राइट्स की मुहिम यहाँ पर उरूज पर थी तो तब तकरीबन एक साल तक एहतजाज होता रहा था, तो मुजाहरीन का ये कहना था कि उनकी उम्मीद ये है कि अब भी कई महीनों तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहे।
सारा आपने बात भी की है, आपने वहाँ पे जाके देखा भी है, ये इनफरादी तौर पे मुतहरक हैं ये लोग आपके ख्याल में, या इसके पीछे बाकायदा जैसे क़यादत होती है, कोई लीडरशिप भी है इन मुजाहिरों को जो मोबिलाइज या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
देखिए दोनों ही चीजें हो रही है, लेकिन ज्यादा देखने में यही लगता है कि इनफरादी सतह पे हो रहे हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज हो रहे हैं, वो जाती तौर पर ये महसूस कर रहे हैं कि वो इस शहर में रहते हैं और उनके शहर में अगर मुजाहरे हो रहे हैं तो वो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भी अपनी आवाज इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो इस तरह से लोग इनफरादी तौर पर भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज होके। कुछ जो तंजीमें भी इसमें शिरकत कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को साथ लेके आती हैं रोजाना, लेकिन ये है कि वो कॉल को उठाती हैं और मुख्तलिफ मौकों पर हम देखते हैं मुजाहरों के दौरान मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो किसी नारे का आगाज करते हैं या किसी स्टेटमेंट का आगाज करते हैं, क्राउड उनको सुनता है, तालियां बजाता है, उनके साथ नारे लगाता है, लेकिन थ्रू आउट द डे मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ किरदार में नजर आते हैं। हमने ये भी देखा कि जब कर्फ्यू के वक्त पीर की शाम को पुलिस ने आगे बढ़ना शुरू किया तो कुछ नौजवानों ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने मुजाहरीन से ये दरख्वास्त करनी शुरू कर दी कि अब वो पुलिस उनको जहाँ से हटाना चाह रही है वो वहां से हटें, तो लोगों की खुद भी अपने तौर पर वो कह लीजिए कि इन मुजाहरों के दौरान एक लीडरशिप का रोल अपनाते हैं।
लेकिन लीडरशिप सारा इस रेफरेंस में बहुत अहम हो जाती है कि अगर इंतजामिया किसी से बात करना चाहे तो वो किससे करे, ये सवाल जहन में आता है।
کمیونٹی لیڈر ضرور ہیں جو رابطے کا کام کرتے ہیں, اس میں جو مختلف آرگنائزیشن ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جن کو ہم سول سوسائٹی کے ارکان کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, وہ جا کے میئر کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں, ان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اور اس میں آپ کو چرچز کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے, اس میں آپ کو پولیٹیکل گروپ کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے, یوتھ گروپ کی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے. تو مختلف سطح پہ لوگ ہیں جو آپس میں رابطے کھلے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال میں رابطے ہوں اور مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا
رہا ہے. سارا جو کہ یہ بہت اہم دور ہے اس سینس میں بھی کہ ایک تو انتخابات کا سال ہے, دوسرا اس حوالے سے بھی کہ کرونا ہے. اگر انتظامیہ کسی وقت ان کو ڈسپرس کرنا چاہے یا طاقت کا استعمال کرنا چاہے تو ایسے کوئی امکانات ہیں؟ فوج کی تعیناتی کی بات کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیا مزاحمت آ رہی ہے سوسائٹی سے یا ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن سے؟
ایکچولی دو تین پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک کرونا وائرس کی وجہ سے اگر لوگوں کو ہٹانے کی بات آتی ہے تو اس کا فیصلہ کم از کم واشنگٹن ڈی سی میں جو میئر ہے میورل داؤر ان کا دفتر وہ فیصلہ لے گا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو بڑی کلیئر طریقے سے یہ گائیڈنس ایشو کرنی پڑے گی کہ یہ مظاہروں کو روکنا جو ہے اس پر کوئی سیاسی وجہ نہیں بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ صحت عامہ کا جو ایشو ہے وہ ہے. تو ایک تو وہ گائیڈنس ان کے دفتر کی طرف سے آئے گی. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی طرف سے مظاہرین کی جانب رویہ یہی ہے کہ جو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ ضرور دیا جائے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو کے اوقات منڈے اور ٹیوزڈے کو شام میں جلدی کر دیے گئے, شام 7 بجے کر دیے گئے, لیکن پھر وینسڈے کو شام 7 بجے کے بجائے 11 بجے سے واپس کرفیو لے جایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس مزید وقت ہو اپنے اس آئینی حق کو استعمال کرنے کا. تو جو ڈی سی کی لیڈرشپ ہے وہ بہت کیئر فلی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے.
آخری بات سارا سیاسی کہنا چاہیے کہ حلقوں کو کس حد تک اس نے متاثر کیا ہے یا یہ معاملہ کس حد تک پولیٹیسائز ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے؟ جارج فلائیڈ کی موت اور ان کی تدفین کے ریفرنس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟
جی سر, میں سوال کی طرف آتی ہوں, لیکن فوج کا جو نقطہ آپ نے اٹھایا وہ بہت اہم ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے پچھلے کچھ دنوں کے دوران ٹویٹر پہ بھی اور اپنے جو ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیمرا پہ بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر مختلف ریاستوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے, ریفیوز کر دیتی ہے ایسے اقدامات اٹھانے سے جن سے قانون کی بالادستی قائم ہو, تو پھر وہ فوج کو متحرک کریں گے. لیکن اس پہ بہت ان کو پش بیک کا سامنا ہوا ہے, نہ صرف مخالفین کی جانب سے بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدھ کے روز جمعرات کے روز انفیکٹ دو اہم سابق ملٹری لیڈر ایڈمرل مائک ملن اور اس کے علاوہ سابق وزیر دفاع جیف میٹس نے تنقیدی مضامین لکھے یہاں پہ دی اٹلانٹک میگزین میں, اور ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کے خلاف فوج کا استعمال جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ جو وزیر دفاع ہیں مارک ایسپر, انہوں نے خاص طور پہ بڑے کھل کے اس نقطے پہ صدر سے اختلاف کا اظہار کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کو اپنے ہی شہروں میں لانا تب کہہ لیجیے کہ ممکن ہوگا جب حالات قابو سے بالکل باہر ہو جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نظر میں حالات ابھی ایسی نیچ پہ نہیں پہنچے کہ فوج کو متحرک کیا جائے. تو صدر ٹرمپ کے ہی جو جس خواہش کا وہ اظہار کرتے رہے ہیں اس سے انہیں کی ایڈمنسٹریشن کی اہم شخصیت نے اختلاف کا اظہار بہت کھل کے کیا ہے.
میں اس جانب اپنے پینلسٹ سے کچھ دیر بعد ان کا انالیسز بھی لینے والا ہوں کہ اس کے پولیٹیکل یا اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں وہ کیا ہیں. تو سارا, جارج فلائیڈ کی تدفین کے ریفرنس میں کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کوئی پولیٹیکل یا سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہو سکتی ہے؟
جی, جارج فلائیڈ کے لیے یادگاری تقریبات متعدد منعقد ہوں گی, اور منیاپولس جو شہر ہے جہاں پہ ان کی ہلاکت ہوئی وہاں پہ ایک یادگاری تقریب جمعرات کے روز ہوئی ہے, اس میں ریورنڈ ایل شارپٹن نے شرکت کی ہے اور ان کی یاد میں الفاظ بھی سلمان بھی وہ ادا کریں گے. ریبن چارٹن یہاں پہ افریقی امریکی کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. اس کے علاوہ جو تدفین ہے فائنل جو ان کی رسومات ادا ہوں گی وہ ٹیوزڈے کو ہیوسٹن میں ادا ہوں گی, کیونکہ جارج فلائیڈ کا تعلق ریاست ٹیکساس سے تھا, اور اس موقع پہ اب تک کی اطلاع کے مطابق سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن بھی شرکت کریں گے. اور یہاں پہ یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے لسنرز کو میں ریمائنڈ کراتی چلوں کہ جو اس سال کے صدارتی انتخابات ہوں گے اس میں وہ صدر ٹرمپ کے مدِ مقابل ہوں گے. تو یہ بہت غور سے دیکھا جائے گا کہ ایک صدارتی امیدوار جارج فلوئڈ کی جو تدفین کی تقریب ہے آخری جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس میں وہ بھی موجود ہیں.
بہت شکریہ سارا زما, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے
अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन। आपको हमने वाशिंगटन डीसी और बाकी मुल्क का एक खाका आपके सामने रखा है मुजाहिरों के रेफरेंस में। अब हम उस पर एनालिसिस लेते हैं क्योंकि मुजाहिरों के बैकड्रॉप में सियासत और सदर डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर सियासी साल के अंदर उनके लिए बज़ाहिर उनकी अपनी इंतज़ामिया के अंदर वज़ीर दिफा जैसी एक पर्सनैलिटी का स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इन मुजाहिरों को हैंडल करने से मुतल्लिक एक पॉलिसी या मुमकिन पॉलिसी थी उससे इख्तलाफ, और फिर उसके बाद उनके अपने एक वज़ीर दिफा जो एक अच्छे जनरल और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी ख्याल किए जाते हैं जिम मैटिस, अगरचे वो अपनी जिम्मेदारियों से फरागत पा चुके हैं, उनकी ये तनकीद कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम अमरीकी मीडिया देखें तो इन्हीं दो बयानात के पस मंज़र में हर तरफ उसकी गूंज सुनाई देती है। कितने अहम है इन दो शख्सियात का अपने प्रेसिडेंट से और उनकी एक जो स्ट्रेटजी है उससे डिस्टेंस करना, वो भी इलेक्शन के साल में इन मुजाहिरों के सियासी असरात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका उसको ऐड करते हैं और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप उस कैंपेन के भी सरबराह हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ हैं जफर ताहिर साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपने हमें ज्वाइन किया। जफर ताहिर साहब, आपसे शुरू करते हैं, आपके ख्याल में मार्क एस्पर का स्टेटमेंट हो या फिर इससे पहले जिम मैटिस का बयान हो जिसमें वे कहते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा सदर, उनके बकौल उनके लफ्ज़ों के मुताबिक, नहीं देखा है जो मुल्क को मुतहद करने की इवन प्रिटेंड भी नहीं कर रहे, कि कोशिश भी नहीं कर रहे और कोशिश को प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हैं, कितना हर्ट कर रहे हैं ये बयान उनको।
ठीक है, सबसे पहले तो असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक्स टू वॉइस ऑफ अमेरिका कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन्स और मुस्लिम अमेरिकन्स को मौका देते हैं, और मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि साजिद तरार साहब भी इस प्रोग्राम पे मौजूद हैं। ये खुद भी एक्टिविस्ट हैं, हम दोनों एक्टिविस्ट हैं, भले हमारा जो सियासी जो रुख हो वो साथ ना हो, ये रिपब्लिकन्स के साथ हैं, मैं डेमोक्रेट्स के साथ, मगर हम दोनों जो हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सियासत जो है ना वो उसको नेगेटिवली आप ना देखें। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत वाकई हुई पुलिस के, मैं समझता हूँ तशद्दुद के नतीजे में, इररिस्पॉन्सिबिलिटी के नतीजे में, तो उसमें इस चीज को सियासी रंग आना तो जरूरी है, इसलिए कि जो लोग हैं वो अगर सियासी रंग नहीं लाएंगे तो ये चीज सरफेस पे किस तरह आएगी। और ट्रंप को मेरे ख्याल से सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड के वाकये से नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मगर जो एक लोगों में एक गम गुस्सा था, कोविड की सिचुएशन भी थी, लोग काफी बंद थे बड़े अरसे से, और देखिए ये जो रेसिज्म है, ये जो तासुब की जो हवा है, ये अमेरिका में नई नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये ट्रंप के आने के बाद पैदा नहीं हुई और ये एकदम से जाएगी भी नहीं, ये काफी पुरानी बात नहीं है। मिड 60s का जमाना लोगों को याद है कि जब जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो आज भी याद करते हैं कि उनके दादा दादी नाना नानी किस तरह रहते थे, और काफी लोगों की जो याददाश्त है वो बड़ी वाजे है और क्लियर है। तो देखिए, लोगों में जो गम गुस्सा है तासुब की वजह से, तासुब की फजा की वजह से, और पुलिस का यहाँ जो किरदार है इस मुल्क में, इस पे नजर सानी की जरूरत है, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रंप के रीइलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, मगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इस वाकये के बाद सामने आएगी वो पुलिस रिफॉर्म पे जरूर तवज्जो देगी, इसलिए कि यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट टोटली लोकल होता है। पाकिस्तानी जो आपके सुनने वालों के लिए शायद ये नई बात हो, यहाँ पे पुलिस का इदारा जो है वो कम्प्लीटली लोकल होता है, उसमें इलेक्शन भी लोकल होते हैं, तो मगर उसपे जो ओवरसाइट है, उसपे जो नजरसानी की जरूरत है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और FBI को, जस्टिस डिपार्टमेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए था। और ये जो कल दो बयान सामने आए, जो आपका सवाल था, ये मेरे ख्याल से बेइंतहा शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। एक नहीं, कई रिपब्लिकन्स हैं जो अब शायद कोशिश करें कि वो किनारा कशी अख्तियार करें ट्रंप से और ट्रंप की कैंपेन से। जरूरी नहीं है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से किनारा करें कशी अख्तियार करें, जरूरी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करें पार्टी के मामले में, मगर मेरे ख्याल से ट्रंप जो है वो वक्त गुजरने के साथ तन्हा होते चले जाएंगे।
साजिद अहर साहब, पहले तो इस बात की तरफ ही आ जाते हैं कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप उनको वाकई सियासी तन्हाई का सामना हो सकता है? मार्केस पर इस वक्त मौजूदा वजीर दिफा हैं और बड़े वाजे अल्फाज में अपने आप को वो डिस्टेंस कर रहे हैं, उनकी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की बात हो या इवन फोटो आप जो हो हुआ उसकी उसकी भी उसको भी वो डिस्टेंस कर रहे हैं। इसी तरह तनकीद बढ़ती जा रही है, सो क्या ये मुमकिन है कि बाकी रिपब्लिकन या ज़्यादातर रिपब्लिकन डिस्टेंस करें प्रेजिडेंट से?
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। जफर भाई का शुक्रिया, बड़े मेरे लिए मोहतरम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आपने इकट्ठा किया हमें। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये इत्तेजाज नहीं है, ये लूट है। लूट इस तरीके से है कि फ्लॉयड साहब की डेथ जो है उसपे तो कोई दो रोइया इस पे ओपिनियन नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने खुद खाल करके लवाकीन को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। अब तक 63 लोग अपने जाने जाया कर चुके हैं। 800 बिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर तक के इमलाक को या लूटा जा चुका है या जलाया जा चुका है। न्यूयॉर्क NYPD अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां के चीफ ने खुद प्रेसिडेंट को खुद रिक्वेस्ट की कि हमें बचाया जाए। वहां 500 लोगों को सुबह अरेस्ट किया जाता है, शाम को छोड़ दिया जाता है। वहां पे जो गवर्नर कोमो और वहां के मेयर के अंदर एयरलिफ्ट चल रही है। अब इसमें एक माइंड सेट है अमरीका की, जिस तरीके से बदकिस्मती थी कि कोरोना को भी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे, उसी तरीके से इस चीज को भी अब वो समझते हैं कि पॉलिटिकल रंग दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ यूज किया जाए। लेकिन दरअसल अब मैं एक छोटा सा आपको थोड़े साल पीछे लेके जाना चाहूंगा कि फर्गुसन, शार्लेट और बाल्टीमोर बराक ओबामा साहब के वाच पे चला था। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म में, पुलिस ट्रेनिंग के, जुडिशियल रिफॉर्म के वादे किए थे। उनके साथ दूसरा बंदा कौन था? वो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन था। जो बाइडन साहब को इस चीज का इसमें इसको ओन करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में 8 साल के व्हाइट हाउस में रहने पर इन चीजों को रिफॉर्म क्यों नहीं किया। और उसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा कि कल जो जो दो बयानात आप बात कर रहे हैं, एक तो मेटिस साहब जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, वो जिस शो में बैठ के उन्होंने एक मुतराजा बयान दिया है वहां से लगता है कि वो बुक का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरा, उसके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है क्योंकि वो खुद सोल्जर रहे हैं, मिलिट्री को पुलिस की तरह यूज अभी नहीं किया जा सकता, एक खास पॉइंट पर जाकर उसके बाद यूज किया जाएगा, अमेरिका इज नॉट देयर येट। उन्होंने इसके इसमें उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने उसको डिसएग्रीमेंट नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि अभी अमेरिका उस बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा। अब उसमें मैं ये थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, आपने खुद देखा है कि अगर आप स्लेवरी की बात लें तो फिर पाकिस्तान कॉलोनी रहा, ब्रिटिश कॉलोनी। अगर गाड़ी आप फ्रंट वाली स्क्रीन से देख के चलाते हैं, बैक मिरर से देख के नहीं चलाते। अब मैं यहाँ पे छोटी सी मिसाल बाल्टीमोर की दूंगा, मेमोरियल डे वीकेंड पे 7 मर्डर हुए हैं, पिछले 70 साल से डेमोक्रेट पार्टी उसको रूल कर रही है। यहाँ पे आज एक बाल्टीमोर शहर एक ऐसा शहर है जिसके 3 जो सबका मेयर है वो जेल जा चुके हैं फ्रॉड में। अब अमेरिका के अंदर हर दूसरे शहर का मेयर जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन मेयर है, और हर शहर जो है वो बैंक्रप्सी के वर्ज पे है। हर शहर जो है वो शिकागो जो कि हमारे बराक ओबामा साहब का होम टाउन था, जहां से उनका नारा लेके निकले थे होप फॉर चेंज का, आप वो देख ले, इज अ नॉन लिवेबल सिटी। अब इन चीजों का हल अगर आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको रेशियल बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लेम करना चाहते हैं, तो भले आप करें, उसकी वजह ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज अगर वो कोरोना का इलाज भी दरियाफ्त कर लेते हैं तो CNN और येलो जर्नलिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आज और उसी पॉइंट पे आज डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद पैदल चल के मिनेसोटा चले जाए। अब कौम फिर भी जो एक सर्टन माइंड सेट है जो कि समझता है कि हमने जितना लूटना है, हमने जो कुछ करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हराएगा, उन्होंने उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना।
डॉलर साहब, मैं अगर कल के रेफरेंस का अगर मैं ये जी आप कीजिए फिर मैं सवाल फ्रेज करता हूँ।
देखिए, डॉलर साहब ने बड़ी ही लंबी चौड़ी बात की और शिकागो और पुलिस रिफॉर्म, बराक ओबामा के बारे में क्या होना चाहिए था और न्यूयॉर्क की क्या हालत है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तमाम अमेरिका की प्रॉब्लम्स पिछले 3 साल में सरफेस पे आई। ये एक एक हिस्ट्री है अमेरिका की, तासुब की, जिसको हमें एड्रेस करना है एज अ नेशन। इट डजंट मैटर कि हम रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। हाँ, ट्रंप साहब ने एक चीज की है कि उन्होंने इन चीजों को वो बड़ी तेजी से सरफेस पे लाए। देखिए, मुझे तमाम दुनिया भर के मैगजीन, अमेरिका के तमाम बड़े अखबार, तमाम जितना भी मीडिया है इंक्लूडिंग फॉक्स के कुछ अगर आप कमेंट्री सुने तो ट्रंप के आने के बाद बाद जो जो सफेद फॉर्म जो 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 इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, उनको बड़ी तफियत मिली है। वो बड़े बड़े इंकरेज हुए हैं और ट्रंप का साहब के जो ऐसे स्टेटमेंट है कि द शूटिंग विल स्टार्ट आफ्टर द लूटिंग, द शूटिंग विल स्टार्ट आफ्टर द लूटिंग स्टार्ट्स, ये सब वो चीजें लोगों को याद दिलाती हैं वो जमाना जो कि 60s का था जब कालों पे बड़े जुल्म किए गए मगर उसके बाद फिर रिफॉर्म्स हुई। तो देखिए, पॉइंट ये नहीं है तारा साहब कि ये तमाम प्रॉब्लम्स 3 साल की हैं, ये तमाम प्रॉब्लम पिछले 300 सालों की हैं। मगर ट्रंप ने आके वही किया है जो कि एक फैशिस्ट मैं कहूंगा मेंटेलिटी है। बहुत सारे रिपब्लिकन हैं तारा साहब जैसे जो मेरे ख्याल से चाहेंगे सही बात करना, मगर ट्रंप की वजह से उनकी सियासत दब गई है। उसी तरह जिस तरह जर्मनी में जब फासिस्ट हुकूमत थी हिटलर की, तो कोई जर्मन हिटलर के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता था कि वो समझता था कि उनके खिलाफ बात करना ऐसा है जैसे जर्मनी के खिलाफ बात करना। या आज हिंदुस्तान में बहुत सारे इंडियंस मोदी के खिलाफ बात करते हुए कतराते हैं कि शायद उनके कॉमेंट्स को लिया जाएगा कि वो इंडिया के खिलाफ बात करें। इसी तरह बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो उनको पता है कि क्या हो रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि रिपब्लिकन्स ट्रंप की ये जो टेंडेंसी है इसकी निशानदेही करें खुल के।
मैं सिर्फ इसमें एक जुमले का इजाफा जरूर करना चाहूंगा, एक दूसरी तरफ का वर्जन है। मेरी एक पाकिस्तानी पुलिस कमिश्नर है, वो पुलिस का एक मौकफ देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर दफा नस्ल परस्ती का एलिमेंट शामिल हो। इसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी शामिल हो सकती है जब पुलिस औसतन 2 अपने ऑफिसर्स की डेड बॉडीज डेली उठा रही है, 911 पे कॉल आती है उनके बकौल और पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे गोलियाँ चल जाती हैं और रोज़ाना 2 पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो उनके बकौल कि पुलिस ऑफिस पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं और लोग पुलिस में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। सो एक तरफ का नुक्ता नजर ये भी हमारे सामने होना चाहिए। कमिंग बैक टू
दैट, छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरे समझ से एक दो चीजें, देखिए वाहिद एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हिस्ट्री में और वो खुद ही अपनी कौम को कुछ ना दे पाए, नंबर वन। अब सियाफ हम कुछ करें तो वो वाकई भी वाइट सुप्रीमेसी है। एंटीफा जो है वो आपके ख्याल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लैक लाइफ मैटर जो इस वक्त फंडिंग कर रही है वो नॉन प्रॉफिट है। इस वक्त फंडिंग कहां से आ रही है जो जिस तरीके से लोग मोबिलाइज करके टेक्सस से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क के जाके स्टोरों को लूट रहे हैं। ये मुझे कल एक चैनल पे किसी ने मुझे कहा कि ये लोग जो है ये मॉर्निंग में है। मॉर्निंग आपको पार्क में नहीं लेके जाती, मॉर्निंग आपको किसी हिल स्टेशन पे नहीं लेके जाती, आपको गुची के स्टोर पे ले जाती है, आपको वो रोलेक्स की दुकान को तोड़ के आपकी मॉर्निंग हो रही है आपकी। मेरे समय से ये बात है। और इशू सबसे बड़ा बात यह है ना, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी बाल्टीमोर सिटी को 70 साल से चला रही है और इस सिर्फ मेमोरियल डे वीकेंड पे 7 मर्डर हुए हैं, 3 मेयर जो है पिछले वो जेल जा चुके हैं। सोल्यूशन ही कोई नहीं डेमोक्रेट पार्टी के पास।
ये देखिए, उन चीजों का सोल्यूशन बहुत जरूरी है तारा साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर आप शायद इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि इन क्राउड्स के दरमियान वो सफेद फार्म इंतहा पसंद एलिमेंट्स छुपे हुए हैं और पकड़े गए हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है और लोगों को उकसाया। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी जो प्रोटेस्ट करेगा उसको इस बात का ख्याल रखना है और कंट्रोल करना है कि क्या उनके दरमियान वो एलिमेंट्स तो नहीं घुसाए जो सोसाइटी को।
ये एक वर्जन है कि इस तरह के अगर मुजाहरे होंगे, ये तोड़फोड़ होगी तो उसका फायदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को होगा। मैं आखिरी सवाल एक करना चाहता हूं,
पुलिस वाली बात को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। देखिए, मैं पुलिस के काफी एडवाइजरी बोर्ड्स और चीजों में इन्वॉल्व रहा हूं। लॉ एनफोर्समेंट की जॉब आसान नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक आम पुलिस ऑफिसर से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती जब उसके सामने उसके शहर अपने शहर के लोग खड़े हों और उसको इस तरह से ट्रीट करो जैसे वो शायद दुश्मन है उनका। मगर पुलिस के जो प्रोसीजर्स हैं, पुलिस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे नजर सानी की जरूरत है। लोग यही कह रहे हैं कि एक आम पुलिसमैन जो वो तो वही प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं जो उसकी किताबों में लिखा है। उन प्रोटोकॉल्स को, उन प्रोसीजर्स को, उन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है।
अच्छा, अब मैं एक और जुमला, चूंकि बार बार वो नस्ल परस्ती का लफ्ज यूज हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कल का एक सर्वे है जिसमें वो रॉयटर्स का है, वो सीएनएन का नहीं है, रॉयटर्स का है और एप्सोस का है, उसके मुताबिक 65% लोग, अमेरिका के आवाम, वो इन मुजाहिरों के हामी हैं। 55% आवाम, ज़ाहिर है यहाँ पे से आप आम की आबादी जो है उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है या शेयर है वो 55% नहीं है, वो 20 के लगभग है। सो इसका मतलब ये है कि बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो भी इस काज को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे खामियां हैं उनको दूर किया जाए। दूसरा, 55% ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस मामले को, इस एहतजाज को, या जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसको बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं किया। तो मैंने ये सिर्फ बैलेंसिंग फैक्टर के लिए रखा है। अब जो मैं सवाल इसी बैकड्रॉप में करना चाह रहा हूँ दोनों अपने पैनलिस्ट से, अब इसके सियासी मजमरात आगे क्या है, क्योंकि इलेक्शन का साल है, इससे पहले COVID-19, उसके रेफरेंस में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने सही हैंडलिंग नहीं की, वक्त पे नहीं की, यही वजह है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेथ, सबसे ज़्यादा केसेस, और अब ये जॉर्ज फ्लॉयड का मामला और अमेरिका भर में मुजाहरे आगे, इलेक्शन के साल में ये क्या नतीजा ला सकते हैं साजिद तारर साहब?
दूसरा, ये जो आज डाके पड़ रहे हैं इसके बाद इसको सुलझाएगा जल्दी कौन? जल्दी से मुराद है कि इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कौन कर पाएगा, ये बैलेट पे क्वेश्चन ये होगा। और उसके लिए उसके जवाब में ये है कि उनका जो अपोनेंट है वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, 40 साल से उसने इसको प्रोफेशन बना के चलाया है, उसकी लॉ डिग्री है, उसने जिंदगी में एक भी जॉब ना क्रिएट की है ना बिजनेस एक क्रिएट किया है, और प्री कोरोना और ये प्री लूट मार इकोनॉमी के हालात क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% थी, किस तरीके से टैरिफ लगा के ट्रेजरी में पैसे आए, किस तरीके से वो मैंडेट करके अफगानिस्तान से भी ट्रूप्स वापस ला रहे थे, किस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर रहे थे, रशिया और चाइना के साथ डील कर रहे थे, तो ये सारा कुछ बैलेट पे होगा। और उसमें दूसरी बात ये है, जितना ये लूटमार हुई है व्हाइट अमेरिकन, और मैं एक और बात कहूंगा खासकर जफर भाई के लिए, मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने खुद कहा कि पॉपुलेशन अफ्रीकन अमेरिकन की बहुत थोड़ी है, जरा गूगल करके देखेंगे ओबामा पीरियड में अपॉइंटमेंट्स जो थी वो सारी के सारी रेशियल बेसिस पे हुई थी, उन्होंने जानबूझ के व्हाइट अमेरिकन और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को स्नब करते रहे हैं वो, जिसका रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप बन के आए थे। तो ये चीजें सारी बैलेट पे होंगी। आज भी जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, सारा कंट्री ये देख रहा है, ये फिर लाइनों में लग के वोट देंगे। और पिछली दफा 2016 में भी लोगों का लोगो था कि वी वांट आवर कंट्री बैक, तो अभी भी लोग जो इन चीजों का बजाय फायदा उड़ेंगे, ये बैकफायर करेगा सारा कुछ डेमोक्रेट पार्टी पे, इंतीफा पे, ब्लैक लाइफ मैटर पे, लोग इस दफा फिर इकट्ठे होकर वोट डालेंगे इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप।
जी जफर ताहिर साहब
जी, तो ये आपका ओपिनियन है, मैं इसकी आपके ओपिनियन की कदर करता हूँ। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि बाइडेन जो है 40 साल से इन्वॉल्व है, बाइडेन की एक जिंदगी एक पब्लिक सर्वेंट की जिंदगी है, वो बिजनेसमैन नहीं है, ना ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी दौलत इनहेरिट की और उसकी बुनियाद पे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। बाइडेन जब तक वॉशिंगटन में रहे रोजाना ट्रेन से डिलीवर से अपने घर जाया करते, तो उनकी एक सिंपल सी जिंदगी है। हाँ, वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर पब्लिक सर्वेंट रहे। जहां तक ये बात है कि लोग परेशान हैं और लोग इसलिए ट्रंप को वोट देंगे, तो देखिए आपने खुद अपने आपके अल्फाज हैं कि ये ट्रंप जो है वो ओबामा की पॉलिसीज का रिएक्शन है। अगर ओबामा ने अफ्रीकन अमेरिकन को अपॉइंट किया तो वो फिर भी वो कमी पूरी कभी नहीं कर पाएंगे, ना वो कर सकते हैं जो कि पिछले 300 साल 400 सालों से जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन उनके साथ जो हो रहा है। आप टेक्सास में देखिए हिस्पैनिक अमेरिकन की कितनी पॉपुलेशन है, क्या आप समझते हैं कि हिस्पैनिक अमेरिकन के पास उस तनासुब की अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है? बिल्कुल नहीं। कल को अगर कोई हिस्पैनिक प्रेसिडेंट आएगा और वो इस चीज को अगर वो हैंडल करना चाहे तो आप उस पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने हिस्पैनिक्स की भर्ती की। यहाँ इस मुल्क में एक मेरिट सिस्टम है, लोगों को एक सर्टन क्वालिफिकेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। अब जहां तक देखिए इलेक्शन की बात है, तो इलेक्शन का तो देखिए ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ना तर्रार साहब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनकी बात सही है कि लोग कहते थे कि जी वी वांट आवर कंट्री बैक, मगर वो ज्यादातर लोग जिन्होंने 2016 में ये कह के वोट डाला कि वी वांट आवर कंट्री बैक, उनको उनका मुल्क नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ उन व्हाइट अमेरिकन की जो सबब में रहते थे, और बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स वोट किया करते थे, उन्होंने कहा कि शायद हमारी जॉब्स वापस आ जाए। कोई जॉब्स वापस नहीं आई, बल्कि लोगों ने देखा कि एक अफरा तफरी का आलम है, एक 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 केओस का आलम है। पूरी दुनिया के आप बात लीडरशिप को देखें, चाहे वो जर्मनी की मार्केल हो, चाहे वो कनाडा के ट्रूडो हो, चाहे वो कंजर्वेटिव लीडर्स हो या लेफ्टिस्ट लीडर्स हो, सब इस बात से परेशान है कि ये ट्रंप साहब, देखिए ये मामला रिपब्लिकन डेमोक्रेट का नहीं है, ये मामला अकलमंदी और कॉमन सेंस का है। ये कौन सा प्रेसिडेंट है, कौन सा लीडर है इस दुनिया में जो सुबह उठ के ट्वीट के जरिए अपनी हुकूमत चलाता हो? ये कौन सा प्रेसिडेंट है जो बगैर सोचे समझे अब व्हाइट हाउस के सामने पुलिस को इस्तेमाल करके आप मिलिट्री की धमकी देके आप लोगों को खाली करवाएं और एक चर्च के सामने जहां खड़े हो जाएं, जिस चर्च में यू आर नॉट इवन वेलकम, आप बाइबल को अपने हाथ में ले लें और ये प्रिटेंड करें कि आप बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं? इट हैज बैकफायर्ड। उस चर्च के पैस्टर ने इस बात की मजम्मत की, दूसरे दिन ये एक और चर्च गए, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक आर्कबिशप जो है, आर्कबिशप जो है वो डीसी का, उसने उस बात की मजम्मत की। तो ये मामला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है जो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो अकलमंदी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये मामला बिल्कुल लेफ्ट और राइट का नहीं है,
सही,
ये मामला कॉमन सेंस का। इस मुल्क को कॉमन सेंस की जरूरत है। मगर आखिरी में मैं असद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वंस अगेन वॉइस ऑफ अमेरिका बाय प्रोवाइडिंग अ फोरम
फरमाया कि जो बाइडन जो 40 साल से पब्लिक सर्वेंट है, ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये पब्लिक सर्विस है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरा, हंटर बाइडन ने करप्शन की है, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। यूक्रेन और चाइना से पैसे बनाए हैं। तो तीसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले नहीं है कि स्लिप हो गए, ये प्रेसिडेंट बन गए। मुझे ब्रेक्सिट के बारे में बताएं, मुझे मैक्रॉन के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद स्प्रिंग ब्रेक के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद मोदी साहब के बारे में बताएं, मुझे उसके बाद इमरान खान साहब के बता रहे हैं। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं, लोग बेजार हो चुके हैं इन जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है जो 40-40 साल से आते हैं और डिलीवर कुछ नहीं करते। उनका रिएक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले नहीं आए, पूरी दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आए।
चले, आपने ये मान लिया कि मोदी और ट्रंप जो है उनका बैकग्राउंड से
नहीं,
मुझे यहाँ पे इंटरफेयर करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारर साहब, आपका आपने में ज्वाइन किया, और जफर तारर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और जैसा कि आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद, मरीजों की तादाद चीन जहाँ से ये वायरस फैला था वहाँ से तजावज़ कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो तादाद है कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की, वो 82,000 से तजावज़, माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 24 घंटों में 82 अमवात हुई हैं, और ये तादाद जो है वो पाकिस्तान में 85,000 से तजावज़ कर चुकी है। 85,264 ये जुमेरात की रात तक के आदाद शुमार हैं, जिनमें 30,000 से ज़्यादा मरीज बहरहाल सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अगरचे नए से नए SOPs और उन पर अमल दरामद कराने के लिए भले वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, KP हुकूमत हो, उनके दावे और ऐलानात सामने आते रहते हैं, लेकिन SOPs पे अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि हालिया दिनों में हाई प्रोफाइल अमवात भी हुई हैं, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, हत्ता के सूबाई वजीर, उनकी भी मौत कोरोना के सबब वाक़ हो चुकी है। क्या मसला है पाकिस्तान के अंदर, कितना बड़ा ख़तरा है, बाहर से बैठे हुए एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में किस तरह के खतरात उमड़ते हुए देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इंटेलिजेंशिया के लोग वो क्या समझते हैं, एनालिसिस लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डॉक्टर एजाज अहमद साहब, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनके न्यूयॉर्क के अंदर कई अर्जेंट केयर्स हैं। जिसमें वो कोरोना पेशेंट्स से डील करते रहे हैं, और इसके अलावा साथ साथ वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए भी मदद फ्राहम करते हैं, भले वो अमेरिका में लोग हों या पाकिस्तान के अंदर। सो दून और डॉक्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसा राणा साहब सीनियर साथी हैं, तजयकार हैं और यूट्यूबर हैं। इसा राणा साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं, आप ये बताइएगा, आज आपका एक प्रोग्राम भी था जिसमें बताया जा रहा है कि कई एक शहर बिलखसूस बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं, क्या इतलात हैं, और ये जो पाकिस्तान में नंबर्स बढ़ रहे हैं इसके ऊपर कोई तशवीश हुकूमत की, इंतजामिया की, शहरियों की आपको नजर आती है?
देखिए, जब कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा था तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी इसको ये समझ रहे थे कि ये कोई ऐसी मामूली सी चीज है और ये आके निकल जाएगी। लेकिन मैं एक सहाफी हूँ और मेरा आवाम से बराह रास्त रहता रहता है, ताल्लुक रहता है। पहली दफा मैंने पाकिस्तान के आवाम में एक खौफ और थोड़ा सा आदम तहफुज का एहसास जो है वो महसूस किया पिछले 48-72 घंटों में। और जो ये आप फिगर अभी बोल रहे थे 84,000 का, ये तो बिल्कुल समझ लें कि ये तो बहुत इनिशियल भी नहीं मैं कहूंगा, ये तो बहुत ही गैर हकीकी है। मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर का मैं बासी हूँ। मैंने अभी जो यूट्यूब पे अपना व्लॉग किया है, मेरी इत्तलात ये है कि लाहौर में ही, हालांकि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जो वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश किया उसमें उन्होंने दावा किया कि 7 लाख के करीब पेशेंट, लेकिन मेरा दावा है कि ये 15 से 20 लाख हो चुके हैं लाहौर में,
सिर्फ लाहौर के अंदर,
और सिर्फ लाहौर में, और हर दूसरे घर में एक कोरोना का पेशेंट मौजूद है। और ये जो रिपोर्टेड है वो अलहदा है, जो अनरिपोर्टेड है वो अलहदा है, जो जेपी के साथ मेडिसिन लेके अपने आप को कर रहे हैं वो अलहदा है, जो घरों में टोटकों से कर रहे हैं वो अलहदा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान कोरोना की लपेट में। आप बात कर रहे हैं कि हम चीन से बढ़ गए, चीन से तो हम डॉक्यूमेंटेशन में जो टेस्टेड है उसमें बढ़ गए, अदरवाइज तो जो असल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये है कि पहली दफा कोरोना ने भरपूर पाकिस्तान पे हमला किया है।
अगेन हम जो नंबर दे रहे हैं, जो नंबर्स हमारे हैं वो ऑफिशियल हैं और बिल्कुल अनऑफिशियली इसी तरह के खतरात हैं जो राणा साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग अभी तक इनिशियली 6 से 7 हज़ार तक रोजाना होती रही है। हेल्थ मिनिस्टर से हमारी बात हुई, अब वो इसको बढ़ा के 15-20 हज़ार तक लेके गए हैं। इसके ऊपर अगर ये नंबर हैं तो फिर इसका मवाजना अगर अमेरिका से करें, यहाँ तो रोजाना 1.5 लाख से 2 लाख टेस्टिंग होती रही है, उसके बाद फिर ये नंबर बढ़े हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपको चूंकि जाना भी है तो इसलिए मैं आपकी राय जल्दी लेना चाहूँगा, क्या ख्याल है आपका, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के अवाम ने, हुकूमत ने कितना इसको संजीदगी से लिया है? अब जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं कि लोग संजीदा हो रहे हैं, सो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी, क्या सबब है पाकिस्तान में इतना बड़ा फैलाव?
जी, मैं आई एग्री विद राणा साहब जो कह रहे हैं, दैट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। जब यहाँ पे भी हमने 2000 केसेस देखे थे न्यूयॉर्क में, तो हमारा ख्याल था यहाँ 50,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएगा, और जब हमने यहाँ पे 20 देखा तो फिर हमने कहा कि डॉक्टरों का, जब हमने पेशेंट देखने शुरू किए अर्जेंट केयर्स में, तो हर दूसरा बंदा आ रहा था, और फिर जब एक बंदा आता है तो वो फिर पूरी फैमिली आती है, 7-8 लोगों को आता है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ख्याल था कि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं। उस वक्त लोग बड़े हैरान हो गए कि आप 10 लाख कह रहे हैं, इसी तरह मैंने टीवी पे कह दिया कि 10 लाख केस हो जाएंगे, लेकिन अभी देखें 20 लाख हो गए हैं। तो ये राणा साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने सीरियस नहीं लिया हुआ, और मैंने देखा कि ईद पे जिस तरह लोग जो है वो घूम फिर रहे थे और शॉपिंग हो रही थी। असल में कोरोना का ट्रीटमेंट तो है नहीं, आपने एक ही तरीके से उसको कंट्रोल करना है कि एक बंदे से दूसरे को ना हो। वो ऐसे ही हो सकता है कि जिसको हुआ हुआ है वो 14 दिन जो है वो क्वारंटीन में रहे और अपने आप को दूसरों से अलग रखे, लेकिन अगर वो बंदा नहीं रखता तो वो जिस जिसको मिलेगा, जिसके साथ हाथ मिलाएगा या जिसके साथ खांसी कोई एयरबोर्न जो एक्सचेंज होगी उसको हो जाएगा, तो ही इज गोइंग टू स्प्रेड। एक बंदा जो है वो 100, 200, 500 और 5 दिन में 35,000 लोगों को दे सकता है। तो दिस इज इतना कंटीजियस वायरस है, ये बहुत स्पीड से जाता है, तो आई थिंक अभी भी अगर सीरियस लें तो इसका,
जब हम कहते हैं सीरियस लें तो क्या मुराद, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, क्योंकि अब लोग मुझे नहीं लगता कि घरों में जाने को तैयार हैं, या हुकूमत लॉकडाउन करने की पोजीशन में भी है फाइनेंशियली, सो इसके साथ अगर सरवाइव करना है तो क्या करें लोग?
देखें, अगर अगर लॉक आइडियल तो ये है कि लॉग 6 वीक का होना चाहिए, जैसे ही वो केस ज्यादा होते हैं तो रेकमेंड हम करते हैं कि 6 वीक्स का लॉक हो। अगर वो नहीं, लॉकडाउन नहीं हो सकता तो उसका फिर ये होता है कि हर बंदा मास्क पहने और 6 फीट डिस्टेंस पे रहे। अगर एवरीबॉडी इज वेयरिंग मास्क, अगर जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो कैरियर भी हैं तो वो दूसरे को नहीं देंगे। हर बंदा अगर मास्क पहने और दूसरे से दूर रहे 6 फीट
तो ये उसका हालत है। डॉक्टर साहब, मैं क्विकली आपसे रैपिड फायर में इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास 10 मिनट हैं, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा मसला आ रहा है, राणा साहब भी इसकी दाइद करेंगे। डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं लोग हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करते। वहाँ पर अजीब अजीब सासी नजरियात चले हुए हैं कि डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर्स जानबूझ के मार रहे हैं। हालांकि खातून डॉक्टर रो के बता रही है कि मेरे बेटे को सर में दर्द था और वो 72 घंटे के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया, अल्टीमेटली कोरोना पेशेंट था, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। सासी नजरियात पे बहुत यकीन है, टेलीविजन बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वजीर वज़राए आला बोल रहे हैं, गवर्नर्स बात कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं सुनते, क्या वजह है?
अच्छा, ये यहाँ पे भी शुरू में बहुत ये डिस्कशन हुई थी अमेरिका में भी, ये कॉन्स्पिरेसी है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी। लोगों को जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए, ना ये किसी ने वायरस बनाया है और ना कोई फैला रहा है और ना किसी को पैसे मिल रहे हैं। ये चाइना का एक एरिया है, साउथ रीजन, वहाँ पे बहुत वायरस आते हैं। वहाँ पे अमेरिका ने, चाइना ने मिलकर एक लेबॉरेटरी बनाई हुई है, हर 10 साल बाद 20 साल बाद कोई ना कोई वायरस वहाँ से निकलता है। लास्ट टाइम मर्ज निकला था वो मिडल ईस्ट से, लेकिन सार्स चाइना से निकला था, फिर दुनिया में, फिर मैक्सिको में इबोला और अफ्रीका से निकला था। इस तरह ये वायरस निकलते हैं और इनको कंटेन करने का तरीका का यही होता है कि आप लॉकडाउन करें और एक दूसरे से दूर रहें और उसको स्प्रेड ना करें। इसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल साजिश हुए ना सोचे ना सुने और ना ही इसके ऊपर आप बिलीव करें,
भरोसा नहीं करना चाहिए। राणा साहब, सासी नजरियात पे लोगों का बहुत भरोसा है, डॉक्टरों के ऊपर एतमाद नहीं है, मशीनरी के ऊपर एतमाद नहीं है, ये चीजें कहाँ लीड करेंगी, कहाँ ले जाएंगी लोगों को?
देखिए, इसका जिम्मेदार जो है ना वो मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का एक तूफान है और उसमें एक आम आदमी जो है ना वो बेचारा कंफ्यूज होके रह जाता है। कभी सोशल मीडिया पे एक ऐसी साजिश थ्योरी आती है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका की साजिश है, थोड़ी देर बाद एक नई थ्योरी आएगी जिसमें आप पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं ये तो इसराइल की साजिश है, फिर नई आ जाएगी कि बिल गेट्स की है, फिर आ जाएगी चीन की है। इस सारे ने ये किया कि कोरोना को लोगों की नजर में मशकूक कर दिया।
लेकिन राणा साहब, मैं अदब के साथ थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करते हुए इस काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर उनको इशार राणा बता रहे हैं, अगर उनको डॉक्टर एजाज अहमद बता रहे हैं, एक सीधी बात, अगर उनको डॉक्टर फौची बता रहे हैं, वो बात भी तो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उसको वो बिलीव नहीं करते?
बात ये कि ये इंसानी फितरत है, वो हमेशा ऐसी चीज जिसमें साजिश की कड़ियां नजर आती है ना उसमें दिलचस्पी लेते हैं। इशार राणा कहता है कि भाई क्वारंटाइन कर लें, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे चलता है कि ये वायरस वुहान से जान के निकाला गया ताकि इससे एक नई किस्म की जो है वैक्सीनेशन होगी और वो आवाम में यूं होगा और यूं होगा, वो उनके लिए दिलचस्पी का बाइस है।
सही।
तो और शुरू में समहाउ दुनिया के तमाम मीडिया ने इसके साथ ज्यादती की, इस वायरस के हवाले से अवाम के साथ, और उन्होंने एक ऐसा फिजा क्रिएट की जिसमें आम आदमी जो था वो कंफ्यूज होकर रह गया। अगर पहले दिन से सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा ये होता कि हाँ ये एक वायरस है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ ये एक वायरस है और इससे हमने निबटना है और निबटने के ये तरीके, तो ये बात सीधी
रहती।
मेरी नजर में असद, मैंने बड़े दुख और तकलीफ से कह रहा हूँ कि हम बहुत देर कर चुके पाकिस्तान में। मुझे बड़ा, मैं तो चुके ये इस लाहौर में रह रहा हूँ, मैं पंजाब में पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं बीइंग जर्नलिस्ट और एक कालम निगार और फिर जाहिर है हम जरा, हमें अल्लाह ने थोड़ा सा चीज ज्यादा दी होती है सो महसूस करने की, तो ये एक मैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बंधे हुए हैं और हमारे चारों तरफ तूफान है और अब हम कुछ नहीं कर।
माफी चाहता हूँ, मुझे क्विकली डॉक्टर जासा के पास जाना है। डॉक्टर साहब, जहाँ पे बड़ी अच्छी खबरें थी कि वैक्सीन बन रही हैं, वहाँ पे आज डॉक्टर फौजी का एक स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि अव्वल तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे कोई वसूख से नहीं कहा जा सकता, अगले साल में अगर ये वैक्सीन आ भी जाती है तो वो कहते हैं कि इम्कान इस बात का है कि ये सिर्फ चंद महीने के लिए मौसर हो। इसका मतलब है कि मुस्तकिल इलाज तो ना हुआ, फिर एक बार फिर यदि लोग डिपेंडेंट रहेंगे कि वैक्सीन बनती रहे, या शायद डायबिटीज़ के मरीजों की तरह ये वैक्सीन भी हर इंसान की ज़रूरत बन जाएगी।
देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं कि वायरस ये आया है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, दो तीन साल वैक्सीन आए या ना आए। लेकिन अब आपने वैक्सीन की बात की है तो उसके बाद थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि तीन कंपनियां हैं जो कि बड़ी काम कर रही हैं, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड। गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने उनको, एक कंपनी को एस्ट्राजेनेका को $1.2 बिलियन दिया है कि वो 300 मिलियन वैक्सीन बनाए ताकि वो अमेरिकन, सारे अमेरिकन को लग जाए। उसका इलेक्शन आ रहा है नवंबर दिसंबर में, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इतनी वैक्सीन हो जाए कि ताकि सारे अमेरिकन को लग जाए। अब वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि अगर आ भी जाती है तो अब अगर आप मुझे कहेंगे कि वैक्सीन लगवाओ तो मैं तो नहीं लगवाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है कि भाई वो मैं लगवा लूं तो सेफ है कि नहीं, 6 महीने बाद मुझे अगर बाद में सीजर होने शुरू हो जाए तो।
लेकिन आखिर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल के बाद ही आएगी ना डॉक्टर?
नहीं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड ट्रायल है। जो ट्रायल्स होते हैं एटलीस्ट 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने ट्रायल चले और उसपे कोई साइड इफेक्ट ना हो। हम खुद डॉक्टर्स नहीं लगाएंगे, अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे तो बाकी लोग कैसे लगाएंगे?
सही।
तो वैक्सीन जो है पहले आ नहीं रही, और अगर आएगी भी तो वो इस तरह की आएगी कि बहुत लिमिटेड डोजेज होंगी और उनका भी पता नहीं होगा कि सेफ है कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं।
सही। सो अब आ जाते हैं आखिरी सवाल आपसे, मैं इस रेफरेंस में करना चाहूंगा। जैसे हम तो पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं कि वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे।
मुदाखलत कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से, एक सवाल मैंने पूछना था कि अभी ये मीडिया में खबर आई है और ये हमने पहले भी कल दी है कि कोई इंजेक्शन आ गए हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है और 20,000 का वो एक इंजेक्शन है और उसका टोटल पहले को 2 लाख समथिंग का पूरा वो कोर्स है और वो मुख्तलिफ बड़े मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है, तो ये क्या, ये इसमें कितनी
बात है?
देखिए वो रेमडेसिविर है, इंजेक्शन है, वो जो स्टडी हुई थी वो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था। पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसको भी उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो बनाए इंजेक्शन, तो प्रोबेबली पीपल आर मेकिंग इट एंड सेलिंग इट। लेकिन हम वो उसी उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे है और उसको आईवी देते हैं, और उस फेज पे जाने से पहले ज्यादातर जो 70% या 80% लोग हैं वो तो बाहर ही होते हैं, जो चल फिर रहे हैं, जो घरों में हैं, उनके लिए वो इंजेक्शन नहीं है।
रेमेडीज वेयर की बात है कि उसके इब्तदाई नतीजे साबित करते थे कि वो मुअसर है काफी हद तक। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, हम तो पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का रोना रो रहे हैं, अब अमेरिका के अंदर एक और बड़ा क्राइसिस आ गया, आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू है, दिन भर प्रोटेस्ट होते हैं, रात में लोग इकट्ठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ये चीज भी किसी बोहरान का सबब बन सकती है कोरोना के बैकड्रॉप में?
बिल्कुल बन सकती है। आजकल जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वो कम हो गई है, ईजिंग हो गई है, तो केसेस ऊपर जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में जहाँ पे एक दिन में 500, 700, 800 केसेस तक आ गए थे, अब फिर 1,000, 1,200, 1,300 तक चले गए हैं, और जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जहाँ पे केसेस 40,000 तक गए थे एक दिन में, वहाँ वो 30,000 तक आए, फिर 20,000 तक आ गए, फिर 17 तक, आज फिर 23,000 तक चले गए हैं। तो वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आप उसको जितना सोशल डिस्टेंस यूज करेंगे इट विल बी देयर, It is there. It's not going to anywhere.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, आपको चुके जाना है। डॉक्टर इसार राणा साहब हमारे साथ रहेंगे, उनसे मैं एक मजीद सवाल करता हूँ। डॉक्टर एजाज थैंक यू सो मच। स्वामी जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जुमेरात की रात है और अमेरिका में जो है इस वक्त केसेस की तादाद 192,000 और वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद 31 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान का जहाँ से हमने शुरू किया कि नंबर बहुत बढ़ चुके हैं। इसार राणा साहब आप ये बताइएगा कि ये एक आपका जो वी लॉग है उसी बैकड्रॉप में कौन कौन से शहर आपके तजिए के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरे से दोचार हैं और उसकी उसकी वजह क्या है?
देखें इस्लामाबाद ने तो इन्होंने एक गैर एलानिया कर्फ्यू टाइप माहौल बना दिया है, मास्क के बगैर आप नहीं निकल सकते, जो SOPs हैं वहाँ पे बहुत सख्ती से अमल हो रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ बाजार बंद कर दिए गए हैं, शॉप्स बंद कर दी गई हैं, और इस्लामाबाद जो है इट इज ऑलमोस्ट यू नो लुक लाइक जैसे यहाँ पे एक सख्त तरीन लॉकडाउन आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के किसी शहर में कोई SOP नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर में किसी SOP की कोई परवाह नहीं की जा रही। आप हैरान होंगे कि चने बेचने वाले की दुकान पे आप चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुफ्त बिक रहे हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। और मैंने अभी जो ईद पे कालम लिखा मैं चाह रहा था वो उसका एक जुमला शेयर करूं कि जब मैं मस्जिद गया तो मैंने ग्लव्स पहने हुए थे और मैंने मास्क पहना हुआ था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि पूरी मस्जिद में एक बंदे ने भी ना ग्लव्स पहने हुए ना मास्क, और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार शायद मैं ही अकेला बड़ा डरपोक हूँ, मौत से डरता हूँ, और शायद मतलब मैं कोई बावले गांव में ऊँट आ गया जो बिल्कुल ही अलर्ट है, मस्जिद में मास्क लगा के बैठा है, ग्लव्स पहन के बैठा, तो मैंने वो उतार दिए। और जाहिर है मैं क्या करता है दुनिया, उस पूरी मस्जिद में मैं एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक अकेला बेवकूफ। तो ये सारी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की, लाहौर की मैंने आपको बता दिया, गुजरांवाला में बेतहाशा पेशेंट है, फैसलाबाद में बेतहाशा पेशेंट है, मुल्तान में बेतहाशा पेशेंट है, यू जस्ट नेम द सिटी ऑफ
मुल्तान के बारे में अखबारी एक खबर मेरे सामने आ रही थी कि शायद वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गया है पाकिस्तान के अंदर, और मुल्तान में भी बहुत सारे ऐसे
जी बिल्कुल ऐसे ही है
जी,
बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी रीजन ये कि बदकिस्मत ही है, देखिए मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान, लेकिन असल चीज ये है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या करेगा वो, अगर वो सख्त लॉकडाउन करता है तो लोग भूखे मर जाएंगे
और गवर्नमेंट दे नहीं सकती है $8 बिलियन। डॉक्टर अता कहते हैं कि $8 बिलियन हमने दिया है इसके ऊपर, और इतनी मजीद सख्त नहीं हो सकती है कि एक $8 बिलियन का
ये $8 बिलियन भी जो है ना, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है
जी,
ठीक है। और लोग ये तो यकीन करें, पाकिस्तानी आवाम जो है जितनी मर्जी बुरी हो जो मर्जी हो, लेकिन इसमें अभी चैरिटी जिंदा है, दुनिया की सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। मैंने अपनी आंखों से सख्त लॉकडाउन के दौरान लोगों को देखा कि वो घरों से गाड़ियों में निकलते थे खाना लेके, और फुटपाथों पे और इधर उधर लोगों तक खाना पहुंचाते थे, इतनी बड़ी तादाद में राशन तकसीम हुआ कि लोगों के घर में दो दो तीन तीन माह का राशन कटा हो गया, लोगों ने बाजारों में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी खाली राशन ही सब कुछ नहीं है ना,
बिल्कुल
जिंदगी के और भी बहुत सारी जरूरियात है। अब मैं मुझे लोग कहते हैं कि जी देखे जी इन्होंने पता था कि पेशेंट बढ़ेंगे तो लॉकडाउन नरम क्यों किया, भाई लॉकडाउन नरम ना करते तो लोग भूखे मर जाते। यहाँ पे अमेरिका जैसे जदीद तरीन मुल्क में जो जिसे हम बड़ा सिविलाइज्ड कहते हैं, मैंने वीडियोस देखे जो जैसे लोग स्टोर्स को लूट के भाग रहे, जिस तरह लूट मार यहाँ पे हुई है,
नहीं इंसानी फितरत है, अगर आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा आपके पास इनकम नहीं है तो यही खतरा होगा। और इसी खतरे के पेश नज़र ये कहा गया यहाँ पे अमेरिका में भी कि ये जो रिलीफ पैकेज फौरी तौर पे अनाउंस कर दिया गया वो उसके पीछे यही खतरा था, यहाँ तक कि फौज को अलर्ट करना पड़ा था।
देखिए इसके बावजूद अमेरिका ने सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया
जी,
और वो लोगों के घर तक पहुंचा चेकों की शक्ल में, और मतलब ये बिल्कुल एक क्लैरिटी थी कि भाई पहुंच रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं ना, बीच में लोग हाथ मार रहे होते हैं, अपनों को दे रहे होते हैं, जो डिजर्व नहीं कर रहे होते उन तक जा रहा होता है, ये भी मसले चल रहे होते हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ी है कि मैं तो वो फिगर्स भी अभी कैलकुलेट प्रॉपर नहीं कर पा रहा, और मेरे तो इर्द गिर्द हर दूसरा बंदा बेरोजगार हो गया। सहाफत के अंदर एक बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया गया, और उसके बाद जो रह गए हैं उनकी तनख्वाहें कट डाउन कर दी गई है, दूसरी तरफ महंगाई जो है वो अपने अरूज पे चली गई है। तो ये एक पाकिस्तान, एक मैं दुआ है मेरी कि पाकिस्तान किसी बड़े अलमिये का शिकार ना हो और किसी तरह हम इस क्राइसिस से निकल जाए, जो अभी बहुत लंबा सफर है, ये तो 15 दिन 20 दिन का तो खेल ही नहीं है, ये तो बड़ा, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3-4 साल चलेगा, चले एक साल बाद हम थोड़ा इम्यून हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसके खिलाफ कुछ हमारी रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाएगी, कुछ मेडिसिन आ जाएंगी, इवन देन जो इक्तिसादी झटका लग गया पाकिस्तान को या दुनिया को
सबसे बड़ा मुआशी धचका दुनिया को पहुंचा है। इसार राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, डॉक्टर इजाज़ अहमद हमारे साथ थे कार्डियोलॉजिस्ट न्यूयॉर्क से, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खुदाम को पहुँचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी